अच्छा, उसके बाद जो है वो WHO ने रिलैप्स को डिफाइन किया है एज़ द री अकरेंस ऑफ द डिज़ीज़ एट एनी टाइम आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये डेफिनेशन WHO की है रिलैप्स की, इसको हमने एज इट इज़ याद करना है कि जब री अकरेंस डिज़ीज़ की होती है आफ्टर द सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, फिर हम उसको रिलैप्स कहेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हैं लाइक द अपीयरेंस ऑफ द न्यू लीजन्स इन केस ऑफ द मल्टी बैसिलरी रीलैप्स, उसमें हम देखेंगे एविडेंस ऑफ द स्किन स्मेयर्स जिसमें बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स विल बी 2 times और मोर देन 2 units, ठीक है। जो है साइन एंड सिम्टम्स ड्यू टू रिएक्शन वो नहीं होगा, यानी कि वी हैव टू ऐड 3 more points टू लेबल ए केस एज अ रिलैप्स। क्या होगा उसमें अगर हम मल्टी बैसिलरी बात करें, उसमें अपीयरेंस ऑफ द न्यू लीजन्स होंगे, बैक्टीरियोलॉजी इंडेक्स 2 or more than 2 times जो है मोर यूनिट्स होगा, और सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स जो रिएक्शन वाले होंगे वो नहीं होंगे, तब हम उसको कहेंगे कि ये एक रिलैप्स है। जो है रिलैप्स इज़ मोर लाइकली देन रिएक्शन इफ़ इट इज़ मोर देन 3 years सिंस ट्रीटमेंट एंडेड। तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के अगर 3 साल के बाद अगर हमें इस तरह की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं तो हमारे पास 2 confusional डायग्नोसिस होते हैं कि या तो ये रिलैप्स और रिएक्शन है। तो रिएक्शन जो है ना वो इतनी देर तक वेट नहीं करेगा कि वो 3 साल के बाद आना शुरू हो, तो इसी वजह से अगर 3 साल के बाद किसी भी टाइम पे अगर सिम्टम्स आते हैं तो इट इज़ मोर लाइकली टू बी अ रिलैप्स देन अ रिएक्शन। एक और स्कोरिंग सिस्टम है जो हम आगे डिस्कस करेंगे जिसकी पे हम रिलायबली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रिलैप्स को फ्रॉम द डिज़ीज़ विच इज़ स्टिल एक्टिव और फ्रॉम द रीएक्टिवेशन ऑफ इनएडिक्वेटली ट्रीटेड केसेस। ये तीनों अलग अलग चीज़ें बहुत मिलती जुलती हैं और इसी से हमने रिलैप्स को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी एक केस वो होता है जो रिलैप्स है कम्प्लीट ट्रीटमेंट देने के बाद जो आता है, एक दूसरा वो है जो डिज़ीज़ जिसमें स्टिल एक्टिव है वो कभी ठीक हुई ही नहीं है और वो कंटिन्यूसली एक्टिव ही रही है, और थर्ड कौन सी है जिसमें हमने पेशेंट को इनएडिक्वेटली ट्रीट किया था जिसकी वजह से रीएक्टिवेशन हुआ। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। फिर उसके बाद एटियोलॉजी ऑफ अ रिलैप्स इन अ लेप्रेसी, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो रिलैप्स है ना वो एज़ कम्पेयर टू रिएक्शंस और नर्व फंक्शन इम्पेयरमेंट जो कि एज अ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ये रेयर इवेंट है। इफ़ अ पेशेंट हैज़ बीन प्रीवियसली कम्प्लीटेड द कोर्स ऑफ थेरेपी आफ्टर सूटेबल इंटरवल, तो उसमें हमें वो इंक्यूबेशन पीरियड के लिए तक वेट करना पड़ेगा ताकि हम कहें कि ये वाकई में रिलैप्स है। क्योंकि अगर एक पेशेंट कम्प्लीटली ट्रीट हुआ है और दोबारा से उसके अंदर कोई दोबारा से इन्फेक्शन होता है बाय माइकोबैक्टीरियम, तो वो अपना इंक्यूबेशन जो उसका टाइम पीरियड है वो पूरा लेगा, उसके बाद उसके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो इसी वजह से हम ये कह रहे थे कि वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 years टू लेबल इट एज अ केस ऑफ रिलैप्स, ठीक है। और फिर उसमें जब ये लेबल हो जाता है एज ए रिलैप्स फिर उसमें हमें सेकेंड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दोबारा से देना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि एक सेकेंड एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन की एक कॉज ये भी हो सकती है कि उसमें एंडोजीनस परसिस्टर्स थे कुछ बैक्टीरिया विच रिमेन डॉर्मेंट इन अ लो नंबर्स इन अ सर्टन साइट इन द बॉडी सच एज द नर्व्स, आयरस, स्मूथ मसल, लिम्फ नोड, बोन मैरो या लिवर, एंड दे रिमेन डॉर्मेंट ओवर देयर एंड दे वर नॉट किल्ड बाई द एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ऑल दो दे वर सेंसिटिव टू द कीमोथेरापेटिक ड्रग्स स्टिल दे वर नॉट किल्ड बाई देम बिकॉज दे वर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। सो ओकेजनली आफ्टर ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी परसिस्टर्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड इवेंचुअली दे रीच अ क्रिटिकल नंबर ऑफ द बैक्टीरिया ताकि वो मैनिफेस्टेशन डिजीज प्रोड्यूस कर सके। तो ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि वट ट्रिगर्स दिस अवेकनिंग ऑफ द परसिस्टर्स टाइमिंग एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिलैप्स।